द प्रिंट के सुप्रभात अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी और आज आपको आमना बेगम का एक लेख पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वे लिखती हैं कि यूपी से कश्मीर तक पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों को ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वे आगे लिखती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च 2024 को एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल के आरामबाग में जनता के समक्ष एक सम्मोहक संबोधन दिया, जैसा कि उम्मीद भी थी। उन्होंने संदेश खली मुद्दे के संबंध में तृणमूल कांग्रेस की विफलताओं पर बात की, जहां पार्टी नेता शेख शाहजहां द्वारा कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को परेशान किया गया था। हालांकि उनके संबोधन में जो बात विशेष रूप से सामने आई वो मुस्लिम महिलाओं से उनकी सीधी अपील थी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार राज्य को टीएमसी के गुंडों से मुक्ति दिलाने के लिए वो भी आगे बढ़ेंगे। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे केंद्र सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार नीतियों और योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने इसकी तुलना सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की माँ माटी मानुष के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद टीएमसी सरकार द्वारा संदेश खाली महिलाओं की उपेक्षा से की। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से ऐसे शासन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने का आग्रह भी किया और उनसे अपनी मतदान शक्तियों का प्रयोग करके भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया। ये पहला उदाहरण नहीं है जब पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की इच्छा जताई है। एक पसमानदा मुस्लिम महिला होने के नाते एक राजनीतिक दल द्वारा एक महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक के रूप में संबोधित किए जाने के गहरे मायने हैं। यह कई लोगों के लिए एक बहुत ही सरल इशारा हो सकता है, लेकिन यह अतीत से आगे बढ़ने का भी प्रतीक है, जहां हमारी आवाज़ों को अक्सर नज़रअंदाज या खारिज कर दिया जाता है। यह हमारी एजेंसी और व्यक्तित्व की मान्यता है, एक स्वीकृति है कि हम अपनी नियति को आकार देने में सक्रिय भागीदार हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जनवरी 2024 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में केंद्र सरकार की योजनाओं के 1000 मुस्लिम महिला लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। पार्टी ने शुक्रिया मोदी भाईजान नारे के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए और मुस्लिम महिलाओं से यह बताने का भी आग्रह किया कि कैसे इन योजनाओं ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। भाजपा ने हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए अपने काम पर भी प्रकाश डाला, जिसमें 3 तलाक पर प्रतिबंध जैसी पहल भी शामिल है। वर्षों तक मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ उपेक्षा के शून्य में गूंजती रही। कोई भी राजनीतिक संस्था उनकी दुर्दशा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। दशकों की पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया गया और अनदेखा कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम महिलाओं को एक महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक के रूप में भाजपा की मान्यता उनके भाग्य को फिर से लिखने के लिए आशा की एक किरण प्रदान करती है। इसके अलावा मोदी ने 7 मार्च को कश्मीर का ऐतिहासिक दौरा किया। उनकी यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार न केवल कश्मीरियों को संबोधित किया बल्कि हज़रतबल दरगाह भी गए, जिसे मुसलमानों द्वारा पवित्र स्थान मोए मुकद्दस कहा जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का एक कतरा है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम ने बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर पहल के हिस्से के रूप में हज़रतबल की एकीकृत विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत शुरू की जाने वाली कई परियोजनाओं में से एक है। इस तरह की पहल न केवल बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को पूरा करने बल्कि हर समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश देती है, जिससे मुसलमानों के हाशिए पर होने का मिथक दूर हो जाता है। अतिया साबरी की कहानी अन्याय के सामने महिलाओं के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में खड़ी है। यूपी में तत्काल 3 तलाक रिट याचिका में 6 याचिकाकर्ताओं में से एक, उन्होंने बहादुरी से उस दमनकारी प्रथा का सामना किया जिसने उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया था। अतिया के पति वाजिद अली ने कथित तौर पर 2015 में अपनी दूसरी बेटी के जन्म के तुरंत बाद एक पत्र में 3 बार तलाक लिखकर उसे तलाक दे दिया। उसने सहारनपुर अदालत में शिकायत दर्ज कराई और 5 साल तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी। अतिया ने गुजारा भत्ता की अपनी लड़ाई में कड़ी मेहनत से जीत हासिल की। अदालत ने वाजिद को उसे 13.5 लाख रुपये करीब देने और 21,000 रुपये का मासिक रखरखाव भी देने का आदेश दिया, जो ऐसी स्थितियों में निहित शक्ति के असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जीत न केवल अतिया की जीत थी बल्कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी परिदृश्य में बहुत बड़े बदलाव का संकेत भी देती थी। जबकि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों ने पहले इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता सीमित कर दिया था, और पिता को प्राकृतिक प्राथमिक अभिभावक का दर्जा दिया था। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियमन ने एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया है। अब मुस्लिम महिलाओं को अदालत में गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है, जिसका फैसला मजिस्ट्रेट के हाथों में है। तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध और मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम ने पुरुषों द्वारा महिलाओं के परित्याग और इसके हानिकारक परिणामों को काफ़ी कम कर दिया है। विवाह के तात्कालिक विघटन को गैरकानूनी घोषित करके, जो दुख की बात है कि अभी भी एक तरफा है, सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस विधायी उपाय ने न केवल महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया है कि उनके अधिकारों और कल्याण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब मुस्लिम महिलाओं पर जिम्मेदारी आती है कि वे अपने वोटों को अपने स्वार्थों की रक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वे केवल एक जनजाति के सदस्य बनकर रह जाएं और अपने समुदाय के पुरुषों के नेतृत्व का अनुसरण करें। मुस्लिम महिलाओं को अपनी एजेंसी पर जोर देना चाहिए और सूचित विकल्प चुनना चाहिए जो उनके अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दें। अपनी मतदान शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करके वे एक ऐसे भविष्य को आकार दे सकती हैं जहां उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, पीठ और उनकी चिंताओं को सम्मान और ध्यान के साथ संबोधित किया जाएगा, जिसके कि वे हकदार हैं। द प्रिंट के सुप्रभात अंक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।